तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। स्वागत करता हूं मैं आप तमाम लोगों का इस शो जिसका नाम है क्राइम फ्लिक्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, आपका परिवार ठीक होगा। पिछली कहानी तीनों एपिसोड के जो फीडबैक है, रिस्पॉन्सेस है, अच्छे मिले, अभी भी मिल रहे हैं, लोग सुन रहे हैं मेरी कहानी को, जो मेरे लिसनर्स हैं, जो मेरे फ्रेंड्स फॉलोवर्स। लेकिन एक खास बात जो मुझे पता चली, जो मुझे लिखा गया मेरे दोस्तों द्वारा, एक्चुअली मेरे दो से तीन दोस्त ऐसे हैं, एक्चुअली तीन चार दोस्त ऐसे हैं जो बाहर एब्रॉड में रहते हैं, और उनका मुझे मैसेज आया इंस्टा पे, उन्होंने मुझे टेक्स्ट किया इंस्टा पे, कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पे डायरेक्टली, कि वो मेरी कहानी सुन रहे हैं और उन्हें मज़ा आ रहा है ये कहानी सुनकर। तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ इस चीज़ को जानकर, क्योंकि उन्होंने अपने कीमती समय में से वक्त निकाल कर मेरी कहानी सुनी और सुन रहे हैं। और आप सभी का, जो आप अपने कीमती समय में से वक्त निकाल कर जो कहानी सुन रहे हैं, बेहद खुशी होती मुझे। क्योंकि इससे पहले, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, एज सच मैंने ये कुछ सोच कर चालू नहीं किया, शुरू नहीं किया इस पॉडकास्ट का दौर, जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे कुछ दोस्त हैं जो मेरे काफ़ी अजीज हैं, उन्हें मेरे कहानी सुनाने का तरीका और मेरी कहानियाँ दोनों काफ़ी पसंद आई थी। सो उन्होंने मुझे सजेशन किया, सो इसलिए मैं आज आप सबके सामने ये कहानी सुनाने का जो है एक हौसला दिखा पाया हूँ। बहरहाल, आज का दिन, आज मैं आपके सामने एक कहानी, मैं इसे कहानी नहीं कहूँगा, मैं इसे एक सत्य घटना कहूँगा, एक हिस्ट्री, जो कि आपको, मुझे, हम सबको ये सोचने के लिए मजबूर कर देगी कि हम कैसे बर्ताव करते हैं उन लोगों का जो हमारे लिए, आपके लिए, अपने देश के लिए सैक्रिफाइस करती हैं अपनी लाइफ, सैक्रिफाइस करते हैं अपने परिवार को, अपनी जिंदगी को और अपने तमाम खुशियों को, जो वो शायद अगर नॉर्मल रहते तो हासिल कर सकते थे, नॉर्मल इन द सेंस आपके और मेरी तरह। बहरहाल, आज की जो कहानी है वो है एक ऐसे शख्स की, जो मेरे ख्याल से आप लोगों ने उसके बारे में सिर्फ, उनके बारे में सिर्फ नाम सुना होगा उनका, क्योंकि उनके बारे में हमें कुछ ज़्यादा पढ़ाया नहीं गया, बिकॉज ऑफ पढ़ाने के लिए कुछ था ही नहीं, शायद इसलिए नहीं क्योंकि उनके साथ बर्ताव कुछ ऐसा किया गया जो मुझे पर्सनली ऐसा लगा है कि शायद ये कभी नहीं होना चाहिए था। आई एम वेरी ऑफ यू नो अशेम्ड कि उनके साथ ऐसा बर्ताव हुआ, जो आज़ादी के उन हीरो में से थे जिन्हें हम क्रांतिकारी कहते हैं। बहरहाल, कहानी शुरू करने से पहले, जैसे कि रिवाज है, एक क्विक न्यूज अपडेट मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। लेकिन आज की जो ये न्यूज है वो शायद आप लोगों को पसंद आएगी, बिकॉज ये कोई पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट या किसी इंटरनेशनल मुद्दे पर नहीं, बिल्कुल एक एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी घटना है जो शायद आप और हम कभी नहीं सुनते। वो ये है कि बेंगलोर में एक बंदे ने एक अपनी स्टोरी जो है वो एक एप्लीकेशन के थ्रू, एक वेबसाइट के थ्रू जानकारी दी है इसके बारे में, कि वो अपनी वाइफ से, जो उनकी करंट वाइफ है अभी, उनसे वो 2 साल पहले बेंगलोर के एक ट्रैफिक सिग्नल में मिला। घबराइए मत, वो कोई सेल्समैन या फिर कुछ और नहीं था। दरअसल ट्रैफिक जाम लगा हुआ था और बहुत सारा वक्त निकल गया, लेकिन उसी बीच उनकी बातें हुई, बातें बढ़ती बढ़ती मुलाकातों में हुई, मुलाकातें हुई, नंबर एक्सचेंज हुए, उसके बाद उन्होंने प्रपोज किया और वो आज शादीशुदा है और शादी होके उनको 2 साल हो गए। सो ये काफ़ी दिलचस्प मुझे घटना लगी, मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए, बिकॉज अमूमन हम लोग जहाँ फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिंडर, न जाने कौन से एप्लीकेशन में हथकंडे आजमाते हैं, मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ खासकर। सो बहरहाल, उम्मीद करता हूँ कि जो भी मेरी इस कहानी को सुन रहे हैं और जो सिंगल है, वो बेंगलोर में उस सिग्नल पर जाएँ और अपनी किस्मत आजमाएं, हो सकता है कि उनके लिए भी कुछ रखा हो। सो चलते हैं अपनी कहानी की ओर। ये जो कहानी है आज की, दरअसल जैसे मैंने आपको बताया कि ये कहानी नहीं, एक सत्य घटना है, तो मैं इसे कहानी नहीं, मैं इसे इतिहास कहूंगा। सो इतिहास शुरू होता है अंग्रेजों के दमन से। अंग्रेज जब भारत में हुक्म कर रहे थे 19 सेंचुरी में। 1901 के बाद ज़्यादातर उनका जो था दमन चालू हो गया था, बिकॉज यू नो काफ़ी सारे जो इंटरनल पॉलिटिशियंस कहें या क्रांतिकारी कहें, नरम दल गरम दल काफ़ी उभरने लगे थे उनके खिलाफ, कुछ ऐसे वो तैयारी कर रहे थे। सो बहरहाल इसी सेंचुरी में, 19 सेंचुरी में कुछ ऐसे भी महान व्यक्ति हुए हमारे भारत देश में जिसे हम आज भी पूछते हैं जिन्हें, और उनके जज्बे को सलाम करते हैं, बाकायदा उनके जन्मदिन पर और उनके जो डेथ एनिवर्सरी जो है हम उसे नमन करते हैं, और जो उनका बर्थडे है वो हम अच्छे से सेलिब्रेट करके शायद पब्लिक हॉलीडे में भी हम उसे सेलिब्रेट करते हैं के रूप में। सो बहरहाल भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये नाम आपको पता होगा, आप जो है हिस्ट्री से काफी वाकिफ होंगे। ये जो तीन नाम है ये ऐसे शहीद क्रांतिकारियों के नाम है जिसे शायद भारत माँ के इस भूमि में एक बार पैदा किया शायद दोबारा ना हो। शायद हम इन जैसे, इन महापुरुषों जैसे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव थे, वैसे लोग शायद ही हमें अभी आने वाली जनरेशन में मिले। लेकिन इनके साथ, इन तीनों के साथ एक नाम और जुड़ता है जो इनके साथी का था, उनका नाम है बटुकेश्वर दत्त, बी के दत्त, और ये कहानी, ये इतिहास उन्हीं के बारे में। बहरहाल आप भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बारे में जानते होंगे क्योंकि 23 मार्च को हम शहीद दिवस के रूप में हम तीनों को याद करते हैं, लेकिन जो बटुकेश्वर दत्त है इनका शायद ही हम में से कई लोगों को इनका जन्मदिन पता होगा, और हमें तो ये भी नहीं पता कि ये इनकी मौत कब हुई या कैसे हुई। बहरहाल दिन था 23 मार्च 1931, लाहौर सेंट्रल जेल, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है फांसी पे लटकाया जाता है, और जो इनके सहपाठी थे बटुकेश्वर दत्त उन्हें मिलती है काला पानी की सजा, जो कि अंडमान निकोबार में है सेलुलर जेल, अगर आप गए होंगे तो आपने देखा होगा वहां पर। ऐसा बोलते हैं, ऐसा कहा जाता है कि सेलुलर जेल की जो सजा है वो शायद फांसी से भी ज्यादा घिनौनी होती थी। मतलब उस दौर पे ऐसा कहा जाता है कि उस दौर पे लोग ये समझते थे कि अगर इन्हें फांसी मिल जाती तो शायद अच्छा होता, बिकॉज जो वहां की जो यातना है सेलुलर जेल की वो काफी ज्यादा होती थी, वो अनबियरेबल होती थी। बहरहाल बटुकेश्वर दत्त जो है उनको सजा हो जाती है। अब ये सजा क्यों होती है, इसके लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना पड़ेगा, पीछे वक्त थोड़ा सा जाना पड़ेगा। शुरू करते हैं बटुकेश्वर दत्त के जन्म से। दरअसल बटुकेश्वर दत्त का जो है वो तत्कालीन जो जन्म हुआ था, तत्कालीन बंगाल के जो डिस्ट्रिक्ट है वर्धमान, उसका एक और एक गांव, वहां पर उनका जन्म हुआ था। डेट है 18 नवंबर 1910, 18 नवंबर 1910, और यहीं पे वो पले बड़े। उनका जो है वो जब वो छोटे बच्चे थे तब वो यहीं पे खेल कूद कर अपना जीवन उन्होंने बिताया, और सामने जब उन्हें पढ़ाई करने का मौका मिला तो वो चले गए कानपुर, और कानपुर में जो है 1924 में उनकी मुलाकात होती है भगत सिंह से। बाय मीन्स ऑफ एनी वो भगत सिंह से मिलते हैं अपने कॉलेज लाइफ के दौरान, और वो काफ़ी ज़्यादा प्रभाव प्रभावशाली थे। कौन? भगत सिंह। तो उनके जो यू नो हम उसे हम कहते हैं कि वन काइंड ऑफ, कि उन्होंने उनको मतलब अपने वर्चस्व में कर लिया था। भगत सिंह की जो सोच थी, जो उनका कहने का जो लहजा था, जो तरीका था, वो काफी मतलब पिन पॉइंट होता था, और वो सटीक एकदम आपका जो अटेंशन है वो ग्रैब कर लेता था भगत सिंह का। क्योंकि आपने फिल्मों में भी देखा होगा, जो अभी कुछ एक साल पहले जो फिल्म आई थी सरदार उधम, उसमें भी जो उधम सिंह थे, दरअसल वो भगत सिंह से उम्र में बड़े थे, लेकिन फिर भी वो भगत सिंह को अपना बहुत अच्छा दोस्त मानते थे, इवन दो वो अपना आइडल मानते थे। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो भगत सिंह को अपना आइडल मानते थे, और वो शख्सियत ही वैसी थी भगत सिंह। सो 1924 को उनसे मिलते हैं, उनके उनसे बात होती है, और काफ़ी प्रभाव जो है वो डालते हैं भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त पे, वो काफ़ी प्रभावित होते हैं भगत सिंह से, और सामने के जो उनका जो एक विजन था उनको वो समझते हैं बटुकेश्वर दत्त, और वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं उनसे जुड़ने के लिए। बटुकेश्वर जो दत्त हैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे, कोई ज्यादा बड़ा उनका एकदम कुछ ये नहीं था, स्टेटस नहीं था, बट वो फिर भी जो थे निकल गए उस राह पे, उस मोड़ पे जहां पे अंग्रेज टेररिस्ट कहा जाता था क्रांतिकारियों को एक जमाने में। बहरहाल वक्त आगे बीतता है, बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह के और नजदीक आते हैं, और साथ ही साथ 1928 में वक्त हो चला है अभी 1928, 1988 में सॉरी 1928 में HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में जो है वो 17 दिसंबर एक्चुअली उनको उस दिन HSR के जो कुछ मेंबर्स है जिसमें भगत सिंह भी थे और उनके जो सहपाठी थे, उन्होंने एक अंग्रेजी अफसर का कत्ल कर दिया था 17 दिसंबर को 1928। ये वही वक्त था जब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बना हुआ था, और वो इसलिए बना था क्योंकि लाला लाजपत राय जी की मौत उसी साल हुई थी, उसे ठीक एक महीना पहले दिसंबर से। वो साइमन गो बैक जो नारा था, जो आप और हमको सबको पता है, जो लालाजी राजपत राय जो सबके आइडल थे, स्पेशली इन गरम दल वालों के, क्योंकि वो क्रांतिकारियों को सपोर्ट भी करते थे, उनको वो समझाते भी थे, उनको वो मार्गदर्शन करते थे, इसलिए वो उनको अपना गुरु मानते थे लाला राजपत राय को HSRA के मेंबर्स। हालांकि जो HSRA का जो एक इतिहास रहा है वो कुछ ऐसा है कि HSRA से पहले एक गठन किया गया था HRA का, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का, इसका गठन हुआ था 1924 में। और दरअसल 1924 में जो राम प्रसाद बिस्मिल और जो अन्य व्यक्ति थे उन्होंने इसका जो है वो बनाया था HRA, और लेकिन बाद में जो है उससे थोड़े थोड़े यंगस्टर जुड़ने लगे, और क्योंकि उनको प्रभावित करना था इसलिए जो और उसके पहले ये जो हत्या हुई थी लाला लाजपत राय की, उसका बदला लेना था इसलिए उन्होंने HSRA का गठन किया, जिसके अध्यक्ष थे हमारे कभी ना पकड़े जाने वाले चंद्रशेखर जी आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद जो थे वो इस चीज़ के, इस संगठन के मुखिया थे, और इन्हीं के छाया छत्र में पल रहे थे भगत सिंह और राजगुरु बटुकेश्वर दत्त जैसे महान व्यक्ति। बहरहाल इनकी जो है वो हत्या कर देते हैं 17 दिसंबर को, भगत सिंह और उनके साथी। उसके बाद जो है वो धर पकड़ की कार्रवाई चालू हो जाती है, भगत सिंह को ढूंढा जाता है यहाँ वहाँ हर जगह। उसी बीच में, उसी दरमियान दरअसल एक कीर्ति करके एक न्यूज़पेपर आया करता था उस जमाने में। सो वहां पर कुछ एक दो साल से दो कानूनों का जो है वो जिक्र हो रहा था। दरअसल कहते हैं कि अंग्रेज जब भी किसी कानून को इंडिया में जो है वो इम्प्लीमेंट करते थे, उससे इम्पोज करते थे, उससे पहले कुछ ऐसे मीडिया थ्रू वो अपनी जो साइकोलॉजी है उनको वो पेनिट्रेट करते थे बाय मींस ऑफ मीडिया, राइट। सो ये आप कह सकते हैं कि जो ये मीडिया के थ्रू जो प्रचलन करना या फिर अपने आपकी छवि अच्छी करना और बाकियों की खराब करना, ये जो प्रथा है जो हमारे देश में आज भी चली आ रही है, वो शायद कहीं ना कहीं अंग्रेजों से है। सो बहरहाल तब वो कीर्ति पेपर में कुछ लेख छपते भी थे भगत सिंह के, ऐसा कहा जाता है, माना जाता है, इसके कुछ ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा होता था। उसी दरमियान में दो कानूनों के बारे में जबरदस्त चर्चाएं होती थी, ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल, और सॉरी पब्लिक सेफ्टी बिल के बारे में। अब ये ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल क्या था? दरअसल जो केंद्रीय विधान परिषद है, यूनियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है, जैसे कि आज की हमारी पार्लियामेंट होती है, जहाँ पे सारे हम डिसीजंस जो है वो संसद और जो MPs हैं वो मिलकर लेते हैं, वैसे एक केंद्रीय विधान परिषद हुआ करती थी, और एक जो विधान परिषद हुआ करती थी, जो लोकसभा और राज्यसभा के तौर पे हम उसे देखते हैं आज के तौर पे। बहरहाल ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल, ये दरअसल था क्रांतिकारियों के हनन के बारे में और मजदूरों के हनन के बारे में। इससे मजदूरों के जो मौलिक अधिकार है वो छिन जाने वाले थे। इस वजह से जो HSRA के जो लीडर्स हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के, उनमें ये काफी चर्चा का विषय था। उन्होंने कहा था कि ये तो सरासर नाइंसाफी है हम लोगों के साथ, मजदूरों के साथ। ये तकरीबन ऐसा ही है जैसे कि कोई एकदम राक्षसी, जिसे कहा गया कि राक्षसी फरमान है ये, बिकॉज ये बिल्कुल ही आपके मौलिक अधिकारों का हनन था। उस वजह से जो आपके भगत सिंह है उन्होंने डिसाइड किया कि हम इसे एक जो है अपना विरोध प्रकट करेंगे अवश्य। अब ये कैसे होगा? दरअसल बटुकेश्वर दत्त जब भगत सिंह जी से मिले उसके बाद इनका जो HSRA का जो दबदबा था वो धीरे धीरे फैल रहा था, क्योंकि सबको इनके बारे में समझ में आ रहा था कि ये बंदे क्या कर रहे हैं, दरअसल जो हमारे क्रांतिकारी हैं वो। और जैसे ही हम जैसे ही भगत सिंह जो है वो आगरा पहुंचते हैं, बिकॉज इनका जो एक बम का एक फैक्ट्री हुआ करता था इन लोगों का, HSRA का, हमारे क्रांतिकारियों का। सो वहां पर ये सब बम बनाना, उसे सिखाना, उसे कैसे बनाया जाता है, उस टाइम पे गूगल तो था नहीं, ना कोई ऐसी पब्लिक डोमेन में ऐसी कोई किताबें थी, तो ये बिल्कुल अपना बहुत ही ज्यादा सीक्रेट हुआ करता था, क्योंकि भनक पड़ती तो सब अंदर होते और काफी सजा भी उनको मिलती। सो इन्होंने बम बनाना सीखा। अब बम बनाने के बाद वहां पर भगत सिंह कहते कि हमें सिर्फ भैरव को सुनाना है। इससे मतलब ये था कि जो बम है उसमें सिर्फ धुआं निकलेगा, वो फटेगा जरूर लेकिन कोई मरेगा नहीं। उसके पीछे मोटो ये था कि उन्होंने अपनी आवाज जो है वो असेंबली के थ्रू एक्चुअली पूरी इंडिया में, अक्रॉस इंडिया उनको ये बात पहुंचानी थी कि आपके साथ क्या होने जा रहा है। सो ये होता है, फैसला हो जाता है कि अब इसे जो है वो हम फोड़ेंगे जाकर। और उसके बाद 8 अप्रैल 1929 वो दिन आता है जब ये डिसाइड करते हैं कि इन दो कानूनों के विरोध में ये जाकर बम फोड़ेंगे। बकायदा ये लोग अपने तैयारी के साथ फुल प्रूफ, बिल्कुल एकदम भगत सिंह जेंटलमैन बनके और बटुकेश्वर दत्त उनके साथ में बकायदा अंग्रेजी टोपी लगाकर और कोट पहनकर वो निकलते हैं केंद्रीय जो है वो विधान परिषद की ओर, लेजिस्लेटिव असेंबली की ओर, और जाकर वो बम फोड़ते हैं और जोरों शोरों से चिल्लाते हैं। और उसके बाद में वो हवाई में जो है वो पैम्पलेट फेंकते हैं, आपने देखा ही होगा काफी सारी मूवीज में। सो ये होता है। उसके बाद भगत सिंह जो है वो आधिकारिक तौर पर पकड़े जाते हैं, उसके बाद उन पे चार्जेस लगते हैं, और बाद में जो है 1931 में जो है 23 मार्च को उनकी सजा मुकम्मल की जाती है। उनकी सजा के पीछे भी काफी सारी कहानी है, वो किसी और दिन करेंगे वरना जो एपिसोड है वो काफी लंबा हो जाएगा। बिकॉज कहा जाता है ऐसा, एक शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि कहा जाता है कि गांधी जी बचा सकते थे 1931 में, जब भगत सिंह जी को फांसी हुई थी तब वो बचा सकते थे, लेकिन अब वो क्या था क्या नहीं इसके ठोस प्रमाण नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं कह सकता कि वो क्या था उस दरमियान में, क्या चल रहा था गांधी जी के मन में। बिकॉज एक समय था जब 1931 में जब गांधी जी जो है वो अंग्रेजों के यहाँ पे जाने वाले थे, मतलब इंग्लैंड जाने वाले थे गोलमेज टेबल पे। गोलमेज टेबल का अधिवेशन का मतलब होता है कि एक गोलमेज होता है उसके सामने जहाँ पे भी जो अंग्रेज जो राज करते थे कॉमनवेल्थ कंट्रीज में, उनके जो मुखिया हैं जिसका काफी ज्यादा वजन है पूरे देश में, उनको बुलाते थे, बाकायदा उनसे बातें होती थी वन ऑन वन फेस टू फेस, और वो सारी चीजें पूछते थे और बताते थे, ये सब होता था। तो गोलमेज टेबल में जो है वो पहले जो गांधी जी हैं उन्होंने मना कर दिया था जाने से, लेकिन वो एग्री करते हैं कुछ शर्तों के साथ, लेकिन उस शर्तों में ये जो शर्त है वो कहीं निगलेक्ट हो गई थी कि क्रांतिकारियों का छुटकारा अंग्रेजी जेल में से, जिसका फलस्वरूप ये हुआ कि भगत सिंह जी को फांसी दे गई। अब वो क्या था क्या नहीं ये किसी डिबेट का मुद्दा है, वो हम किसी और दिन करेंगे। बहरहाल जब उन्हें फांसी दी जाती है तो जो बटुकेश्वर दत्त हैं, अब बटुकेश्वर दत्त इनके साथ होता है कि इन्हें काला पानी की सजा, जहाँ पे वीर सावरकर थे सेलुलर जेल में अंडमान निकोबार में, काफ़ी यातनाएं इन्हें देना चालू किया अंग्रेजों ने वहाँ पे, जैसा कि होता है जब आप जाएंगे तब आपको पता चलेगा, महसूस होगा उन यातनाओं के बारे में, एक झलक जो है वो आपको दीवारों पे और मॉन्यूमेंट्स के तौर पर आपको देखनी चाहिए मेरे ख्याल से। सो बहरहाल बटुकेश्वर दत्त एक मध्यम वर्गीय परिवार के जो बच्चे हैं वो किशोर, एक किशोर वो सेलुलर जेल में जाता है बकायदा। उनको सजा होती है दरअसल काला पानी की, लेकिन वो चाहते थे कि उन्हें फांसी हो। बटुकेश्वर दत्त, ये जो पहले के जो क्रांतिकारी थे ना, इनमें पता नहीं कौन सा खून था कि ये बिल्कुल देश के लिए मरना चाहते थे। बिल्कुल इनका कोई ऐसा सीन नहीं था कि हमको जीना है, हमको शादी करनी है, हमको फलाना ढिमकाना कुछ करना है, बिल्कुल नहीं। इन्होंने बस जहां देखा कि भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जी, जिन्होंने जहां पे बोला जहां पे जिंदगी दांव पे लगानी हो, तो राम प्रसाद बिस्मिल, ये जो राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, और भी काफी नाम है, रात हो जाएगी, ये जो हैं लोग, ये काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। बहरहाल फांसी मुकम्मल होती है, भगत सिंह हम सब को छोड़ के चले जाते हैं इस दुनिया से, और उसके बाद चालू होता है स्ट्रगल और गुमनामी की एक ऐसी कहानी जो शायद आपको और मुझे सोचने पे मजबूर कर दे कि हम जहां इस देश में शहीद क्रांतिकारियों को ढूंढने, उनको उनकी खोज करने निकलते हैं, और वहीं हम ऐसे क्रांतिकारियों के साथ में जो कि जिंदा हैं, जिन्होंने अपने देश के लिए सैक्रिफाइस किया है, उनके साथ हमारा बर्ताव कैसा होता है। बहरहाल ये थी आज की कहानी, एपिसोड नंबर 1। मैं आपसे अभी इजाजत चाहता हूं, जारी रखेंगे इस कहानी को हम एपिसोड नंबर 2 में, और सुनेंगे बटुकेश्वर दत्त की एक अनटोल्ड स्टोरी जो हमें शायद कभी इतिहास में नहीं पढ़ाएगी। और मैं चाहता हूं कि जब ये कहानी आप सुने, दोनों एपिसोड, तो मैक्सिमम लोगों को आप बटुकेश्वर दत्त के बारे में बताएं, क्योंकि एक ये ऐसे पात्र हैं जो बिल्कुल बिल्कुल हमारे रिस्पेक्ट को डिजर्व करते हैं, क्योंकि ये थे इसलिए हम हैं, और इसलिए भी ताकि हमें पता चले कि हमें किन किन चीजों से वंचित किया गया था जो हिस्ट्री की किताब में कहीं नहीं है। मुझे अभी भी याद है कि बटुकेश्वर दत्त का जो फर्स्ट फोटो है मैंने अपनी स्कूल टाइम्स में देखा था, अपनी हिस्ट्री की बुक्स में, और बिल्कुल छोटा सा एक उनका फोटो था बटुकेश्वर दत्त का, और शायद इनका जो फोटो था उसके बाद मैंने कोई हिस्ट्री की बुक में कभी इनके बारे में नहीं पढ़ा ना सुना, और ना ही इनके ऊपर कभी कोई फिल्म या फिर कुछ ऐसी जो कहानियां हैं वो कभी दिखाई गई या लिखी गई या पर्दे पर मौजूद है। बहरहाल अभी मैं आपसे लेता हूं इजाजत, मिलेंगे हम इस कहानी के नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें, और देखते और सुनते रहें, और प्लीज लाइक, फॉलो और शेयर करते रहें इस एपिसोड, इस पॉडकास्ट का, जिसका नाम है क्राइम फ्लिक्स। धन्यवाद।